समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं। नया दिन, नई घटनाएं, नया उल्लास और परिक्रमा के नए अंक को आपके लिए लेकर हाजिर हैं हम और लाए हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिवस। परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं मुदिता और मेरे साथ है मेरी को होस्ट रम्या। रम्या, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द लवली लिसनर्स हू हैव ट्यून्ड इन टू परिक्रमा ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज ऑन एफएम गोल्ड। आई एम रम्या एंड विथ मी टुडे इज माय को होस्ट मुदिता एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, डिस्कशन सेगमेंट डेडलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। All these over the next 30 minutes. Let's begin with the news headlines first. Prime Minister Narendra Modi says his government aims at making India a developed country with a vision beyond vote bank politics.
Maharashtra aur Jharkhand Vidhan Sabha chunavon mein rajnitik diggajon ka prachar zor pakad raha hai.
At least 5 Maoists killed in an encounter with security forces in Narayanpur district of Chhattisgarh.
दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंची, अगले 2 दिनों तक रात और सुबह के समय हल्का कोहरा जारी रहेगा।
एंड इन हॉकी, इंडिया टू टेक ऑन चाइना एट द ऑनगोइंग वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी इन बिहार दिस इवनिंग। And now it's time for our segment Dateline India in which we take a look at the developments taking place at national or global level. Today we will talk about National Press Day. So Mudita, we gather today to celebrate the crucial role of a free and responsible press in our society.
Ji.
We'll dive into the history and significance of National Press Day, explore the vital functions of the Press Council of India and reflect on the evolving nature of the media landscapes. So stay tuned as we honor the fourth pillar of democracy. But Mudita, can you tell our listeners how did it all begin?
जी बिल्कुल रम्या, तो जैसा कि रम्या ने बताया आपको कि आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है और रम्या ये हम सब जानते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और आज का दिन भारत में एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस का प्रतीक है। प्रथम प्रेस आयोग ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा और पत्रकारिता में उच्च आदर्श कायम करने के उद्देश्य से एक प्रेस परिषद की परिकल्पना की थी। इसके परिणामस्वरूप 4 जुलाई 1966 को भारत में प्रेस परिषद की स्थापना की गई जिसने 16 नवंबर 1966 से अपना विधिवत कार्य शुरू किया और तब से लेकर आज तक हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है।
एब्सोल्युटली, एंड I'd like to tell our listeners that on this day, the council commenced its role as a moral watchdog, safeguarding the freedom of the press and ensuring that press maintains ethical standards and operates without undue influence. The day celebrated across the country where journalists, media professionals and news organizations reflect on their duties and the power they wield. The Press Council has since worked tirelessly to ensure that the media maintains high ethical standards. It has been instrumental in resolving complaints related to violations of press norms and threats to press freedom. The Press Council has been a crucial body in maintaining the credibility of Indian journalism. It ensures that the press not only remains free, but also responsible.
जी बिल्कुल रम्या, और ये तो हम बात कर रहे हैं मौजूदा समय में प्रेस की भूमिका पर, लेकिन हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम रहा है उसमें भी प्रेस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी और इन्होंने औपनिवेशिक सरकार द्वारा किए जा रहे अन्याय के विरुद्ध जागरूकता फैलाने में मदद की, साथ ही सामाजिक सुधारों के लिए भी बहुत काम किया। जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट, जिसे हिक्कीज गजट भी कहा जाता था, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। इसके बाद राजा राजा राम मोहन रॉय का संवाद कॉमेडी और मिरातुल अखबार, दादा भाई नौरोजी का रास्त गुफ्तार, बाल गंगाधर तिलक के केसरी और मराठा, अरविंद घोष का वंदे मातरम, महात्मा गांधी के इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन, अम्बेडकर का मूक नायक और बहुत से अन्य समाचार पत्र पत्रिकाएं भारत के स्वाधीनता संग्राम और सामाजिक सुधार आंदोलनों का महत्वपूर्ण हिस्सा बने।
एब्सोल्युटली मुदिता, एंड टॉकिंग अबाउट द थीम दिस ईयर, इट इज द चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस। द प्रेस लाइक मेनी अदर इंस्टीट्यूशंस हैज इवॉल्वड ड्रास्टिकली ओवर द डेकेड्स। टुडे वी लिव इन एन एज वेयर डिजिटल मीडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड द वे न्यूज इज डिलीवर्ड एंड कंज्यूम्ड। The rise of social media, online news platforms and citizen journalism has reshaped the traditional media landscape. In the past, journalists worked mainly with newspapers, radio and television. But now, news is instant and can come from anyone with a smartphone. While this has democratized information, it has also brought new challenges, especially concerning misinformation, fake news and the need for credible sources. The nature of the press is indeed changing rapidly. We are now in an era where news travels faster than ever, and the boundaries between traditional media and social media are blurring. While this offers incredible opportunities for democratizing information, it also presents challenges. The question now is not just about what news is being reported, but how to ensure its accuracy and credibility.
बिल्कुल रम्या, और जैसे जैसे आपने बोला कि जैसे जैसे पत्रकारिता की प्रकृति बदल रही है, वैसे ही भारतीय प्रेस परिषद की भूमिका भी नई चुनौतियों के अनुरूप बन रही है।
बिल्कुल,
जैसे अब वे डिजिटल पत्रकारिता के मानकों को बनाए रखने और ये सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि उभरते मीडिया प्लेटफॉर्मों को उनके द्वारा वितरित सामग्री के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। मुझे लगता बड़ा जरूरी होता जा रहा है ये। और पत्रकारिता की नैतिकता की बात करें तो प्रेस परिषद नियमित रूप से दिशा निर्देश जारी करती है और उन विषयों का अध्ययन करती है जो मीडिया और समाज दोनों को प्रभावित करते हैं।
यस मुदिता, एब्सोल्युटली, एंड आई बिलीव दैट टुडे मोर देन एवर द प्रेस मस्ट बैलेंस द स्पीड ऑफ रिपोर्टिंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी मस्ट एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द डिजिटल एज, बट वी मस्ट ऑल्सो बी माइंडफुल ऑफ द एथिकल कंसिडरेशंस दैट इंश्योर दैट द न्यूज वी कंज्यूम इज रिलायबल एंड ट्रूथफुल। इंडीड, digital journalism presents both opportunities and challenges. But as we embrace these new technologies, we must never lose sight of the core values that have defined the press for decades: truth, accuracy, and fairness.
बिल्कुल रम्या, तो लोकतंत्र, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए स्वतंत्र प्रेस आवश्यक है और भारतीय प्रेस परिषद प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साथ ही ये भी सुनिश्चित कर रही है कि मीडिया देश के लोगों के प्रति जिम्मेदार रहे। तो इस राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर हम प्रेस की उपलब्धियों का जश्न तो मनाते ही हैं और साथ ही एक जागरूक और पारदर्शी समाज को आकार देने में उसकी जिम्मेदारी की पुष्टि भी करते हैं, चाहे वो समाचार पत्रों के माध्यम से हो, टेलीविजन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से हो। प्रेस की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है।
एब्सोल्युटली, एंड टुडे वी आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग ऑडिट दिवस। It's celebrated every year on the 16th of November to commemorate the inception of the Institution of Controller and Auditor General of India and its contribution towards good governance, transparency and accountability. Addressing the 4th Audit Divas in New Delhi today, Lok Sabha Speaker Om Birla highlighted that Controller and Auditor General of India is working with great transparency and its credibility and authenticity are now recognized globally.
श्री ओम बिरला ने उल्लेख किया कि उन्होंने विभिन्न देशों से लोगों को भारतीय ऑडिटिंग प्रणाली का अध्ययन करने के लिए भारत आते देखा है। उन्होंने कहा कि ये आगंतुक भारतीय प्रणाली से सीखते हैं और इसे अपने देशों में अपनाने का प्रयास करते हैं। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या है खास।
So let me take you, Mudita, to first Hyderabad. A delegation of 8 media professionals from Hyderabad, led by Dr. Manas Krishnakant, Deputy Director of Press Information Bureau, Hyderabad, Telangana, recently concluded its week-long tour of Kashmir. The visit was organized by Press Information Bureau, Hyderabad, under the ambit of Media Outreach Program, with an aim to provide the visiting journalists with an understanding of various central government initiatives in and across the region. PIB Srinagar hosted the delegation to visit various developmental projects, institutions and related places to have first-hand experience. The delegation was provided overview of several centrally sponsored programs and developmental work being undertaken by the Jammu and Kashmir government.
The Hyderabad media delegation visited various central government institutions and had field visits of projects to understand and see themselves the ongoing progress in various sectors with the liberal financial and other support of central government. The delegation also called on Lieutenant Governor Manoj Sinha and got overview of developmental scenario in Jammu and Kashmir. We spoke to some members of delegation to know about their experiences. Talking to Parikrama, Bureau Chief of Hyderabad-based Daily Hindi Milap, FM Saleem expressed his views about the tour.
अच्छी बात ये लगी कि बहुत से जो यंग एंटरप्रेनर्स हैं तो उनको वो ट्रेनिंग दी जा रही है. दुनिया की जो जन्नत कहा जाता है यकीनन ये जो है जमीन की जन्नत है और लोग बड़ी तादाद में यहाँ आते भी हैं. मुझे लगता है लोगों का आना जाना जारी रहना चाहिए.
एंड इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट राजेश्वरी कल्याणम ऑल्सो एक्सप्रेस्ड हर व्यूज.
जो देखने को मिला मुझे बहुत खुशी मिला. जिस तरह से गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रहा है सबको एंड हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर जो भी स्ट्रेंथ है कश्मीर के वो स्ट्रेंथ के ऊपर जो फोकस जा रहा है वो मुझे बहुत अच्छा लगा.
ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ पीआईबी श्रीनगर काजी सलमान टॉक्ड अबाउट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टूर.
मेन मकसद मीडिया डेलीगेशन का ये था कि वहाँ के जो लोग आए एक तो फॉस्टर मीडिया टू मीडिया कनेक्शंस और दूसरा ये हो कि जो वहाँ के जर्नलिस्ट हैं उनको अंडरस्टैंडिंग मिले यहाँ की सोसाइटी के बारे में, यहाँ के डेवलपमेंटल प्रोसेस के बारे में और यहाँ की गवर्नेंस के बारे में. एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट आए यहाँ पे जिनको हमने होस्ट किया, एक कम्प्लीट स्टोरी लेके जाए जम्मू कश्मीर के बारे में, यहाँ पे क्या क्या तब्दीलियां आई हैं और क्या क्या तरक्याती काम हो रहे हैं.
डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ पीआईबी हैदराबाद हु वाज कंडक्टिंग द मीडिया डेलीगेशन फ्रॉम हैदराबाद डॉक्टर मानस कृष्णकांत एक्सप्रेस्ड हिज कंटेंटमेंट ओवर द सक्सेसफुल प्रेस टूर टू कश्मीर.
होलिस्टिकली वी हैव अ वेरी पॉजिटिव फीलिंग आफ्टर विजिटिंग श्रीनगर. 5 days वी हैव विजिटेड ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस लाइक CSIR RRIM एंड कानीहम्मा विलेज व्हिच इज अ क्राफ्ट विलेज. विजिटेड द श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट. इट्स अ होलिस्टिक experience for us as a team and everyone of our team were very much happy.
The members of media delegation overall appreciated the initiative to foster media relations as well as take success stories from one region to another, thereby strengthening Ek Bharat Shreshth Bharat mission of central government. Tariq Rathur for Parikrama from Akashwani Srinagar.
To Ramya, ab Kashmir ke baad aap hame kahan le ja rahi hain?
Main aapko le chalti hoon Goa.
Ji.
Like every year since 2004, this year also Goa is immersed in the celebration of the 55th edition of the International Film Festival of India. It's organized by the National Film Development Corporation, Ministry of Information and Broadcasting, and Entertainment Society of Goa in collaboration. State Government of Goa has been playing pivotal role in successful conduct of every IFFI since its fixed venue in Goa in 2004. Physical infrastructure and security to all participants is provided by Goa government. This year also, Goa is fully prepared for the 55th edition. A report.
IFFI provides an opportunity for filmmakers to showcase their talents, reach new audiences and share unique stories. This year's program features films across 16 curated segments. Country of focus is Australia for this year's edition. The Indian Panorama section will showcase 25 feature films and 20 non-feature films during its 55th edition. The opening film of Indian Panorama is Swatantra Veer Savarkar by Shri Randeep Hooda, while the non-feature category will open with Ghar Jaisa Kuch, Ladaki, directed by Harsh Sangani. Ishani Gupta for Parikrama.
The 43rd Indian International Trade Fair IITF is in full swing on its third day. The day witnessed the inauguration of 3 new pavilions. Union Minister of MSME Jitan Ram Manjhi inaugurated the MSME Pavilion as well as the Khadi and Village Industries Pavilion. In addition, Union Textile Minister Giriraj Singh also inaugurated the Ministry's Pavilion at the fair. The theme for this year is Viksit Bharat at 2047. More from our correspondent.
The fair has been momentous on day 3. Apart from the inauguration of MSME, Textile and Khadi pavilions on the day, the fair witnessed a remarkable footfall of visitors. Several pavilions, including ones by the Railways Ministry, Steel Ministry and Mines Ministry among others, have also been opened for the public. The event is hosting over 3,500 exhibitors from India and abroad, with the event expected to attract nearly 1 lakh visitors daily. The fair, currently hosting its business days, will be open for the general public from the 19th of this month till the 27th of November. For Parikrama, Bhanu Pratap Singh.
Now let's take a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
16th of November is the death anniversary of seven freedom fighters who were hanged to death for their role in the 1915 Lahore conspiracy case. They were Kartar Singh Sarabha, Vishnu Ganesh Pingle, Bakshish Singh, Jagat Singh, Suran Singh, Ishar Singh and Harnam Singh. The revolutionary and patriot Kartar Singh Sarabha was merely 19 when he was executed by the British.
Jag tak duniya utte dhup te chhaan rahu Kartar Singh.
Kartar Singh was born on 24th May 1896 in Sarabha village near Ludhiana. He completed his basic education in Ludhiana.
In 1912, he was sent to America for higher studies. Upon reaching San Francisco, an incident at the immigration office changed his life forever. He noticed that Indians were subjected to humiliating questioning, while immigrants from other countries were allowed in after bare minimum formalities. This infuriated the young boy, and he started questioning the existence of British rule in India.
When the Ghadar movement was born in 1913, Kartar Singh became one of its key members. He was made in charge of the Punjabi edition of Ghadar, the party mouthpiece. The newspaper highlighted the atrocities of the British and fueled revolutionary ideas among overseas Indians.
Soon, World War I broke out and members of the Ghadar party decided that it was time to shift base to the homeland and mobilize the countrymen. On September 15, 1915, Kartar Singh left for India. He met well-known revolutionary Rasbihari Bose in Benares and informed him of the arrival of 20,000 members and workers of the Ghadar party and plans of the revolution. Unfortunately, the British got wind of these plans and launched a massive operation to apprehend them. Several members were arrested, but this did not deter Kartar Singh from planning ahead. He went about preparing the base for the revolution in Punjab.
He focused on mobilizing Indian soldiers in the British Army to join the movement, especially cantonments of Meerut, Agra, Banaras, Allahabad, Ambala, Lahore and Rawalpindi, and simultaneously set up a small-scale arms manufacturing unit in Ludhiana. The date for revolt was set for February the 21st, 1915. A plan was made to attack cantonments of Mian Mir and Firozpur, whereas Ambala was prepared for a mutiny. Meanwhile, the British reacted swiftly and arrested a number of revolutionaries.
Kartar Singh, however, managed to evade arrest. The promised revolution did not come to fruition. Refusing to give up, Kartar Singh made a last-ditch desperate attempt on March 2, 1915, to rouse the Indian soldiers in Sangodha and incite the soldiers to mutiny. This time, a soldier got him arrested. He was sent to trial with the other members of the Ghadar party at Lahore, in what came to be called the Lahore Conspiracy Case. Kartar Singh and many others were tried in the Lahore Conspiracy Trial in April 1915 for their roles in the February plot.
When questioned about his role, Sarabha was defiant, stating that it was his duty to get Indians to rebel against the British. Sarabha was executed at the Lahore Central Jail on 16th of November 1915. Bhagat Singh always used to keep Sarabha's photo in his pocket. India will always cherish the memory of its hero, Shaheed Kartar Singh Sarabha.
The freedom struggle hero Vishnu Ganesh Pingle, who was executed along with Kartar Singh Sarabha and five other revolutionaries, laid down his life for the motherland at the age of 26. He was born in Talegaon, Dhamdere village of Pune district on January 2, 1889. After completing his schooling, Pingle went to Washington and got a degree in electronic engineering.
During his stay in the US, he came in contact with revolutionaries such as Lala Hardial, Kartar Singh Sarabha and Pandit Kanshiram and became an active member of the Ghadar party. Pingley used his engineering skills in making bombs for the party. After coming to India, he started revolutionary activities in Punjab and maintained secret contacts with revolutionaries including Ras Bihari Bose and Sachindranath Sanyal.
During World War I, the Ghadar Party planned an armed uprising against the British. They arrested Pingley from Meerut cantonment on March 24, 1917, with 18 live bombs and other explosive material. He was hanged to death in the Lahore Central Jail on November 16, 1915.
और अब खेल के मैदान की हलचल. क्रिकेट में भारत ने कल जोहान्सबर्ग के वॉन्डरर्स स्टेडियम में चौथे और अंतिम T20 इंटरनेशनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को 135 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया. इस जीत के साथ भारत ने चार मैचों की T20 सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली. जीत के लिए 284 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम 19वें ओवर में 148 रन पर सिमट गई. इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में एक विकेट पर 283 रनों का विशाल स्कोर बनाया. तिलक वर्मा ने 47 गेंदों में 120 रन बनाए, जबकि सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन ने 56 गेंदों में 105 रनों का योगदान दिया. तिलक वर्मा को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया. और अब समय है उन हस्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिवस. तो श्रोताओं, हम आज सबसे पहले याद कर रहे हैं
उदा देवी पासी को. So she was an Indian female freedom fighter who participated in the war on behalf of Indian soldiers against the British East India Company during the Indian Rebellion of 1857. She was a member of the women's squad of Wajid Ali Shah, the 6th Nawab of Awadh. Uda Devi Pasi and other female Dalit participants are today remembered as the warriors or Dalit Viranganas of the 1857 Indian Rebellion. She killed more than 24 British soldiers by climbing a tree in Sikandarbagh, Lucknow. Although Uda Devi also became a martyr after fighting for a long time in this battle.
और आज मशहूर उपन्यासकार गुलशन नंदा की पुण्यतिथि है. गुलशन नंदा का जन्म 1929 में रावलपिंडी में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है. बंटवारे के बाद वो दिल्ली आ गए और वहां चश्मे की दुकान में काम करने लगे. लेकिन रम्या, शौक तो उन्हें लिखने का था, तो उन्होंने नॉवल लिखना शुरू किया.
जी बिल्कुल.
56 साल की अपनी उम्र में गुलशन जी ने 51 उपन्यास लिखे और उनके उपन्यास हिंदुस्तान की कई अलग अलग भाषाओं में अनुदित भी हुए.
एब्सोल्युटली. एंड सम ऑफ हिज मेजर वर्क्स वर नीलकंठ, लरजाते आंसू, कलंकिनी, घाट के पत्थर एटसेट्रा. एंड मेनी ऑफ हिज नॉवल्स वर ऑल्सो अडेप्टेड इन टू हिंदी फिल्म इन द 60s एंड 70s, इंक्लूडिंग मोर देन अ डजन बिग हिट्स ऑफ दैट पीरियड लाइक काजल, कटी पतंग, खिलौना, शर्मीली एंड दाग. His films had a range of themes, from social issues and romance to action thrillers. Let us listen to this song from the film Kati Patang.
Ye shaam mastani madhosh kiye jaan mujhe do
और श्रोताओं, आज हिंदी और मराठी सिनेमा के सबसे सहज अभिनेताओं में से एक डॉक्टर श्रीराम लागू की जयंती है. 42 साल की उम्र में उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा और हमें अब बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके पहले वो एक ENT सर्जन थे.
जी जी जी.
डॉक्टर लागू ने अपने फिल्मी करियर में किनारा, सदमा, मुकद्दर का सिकंदर, विधाता, लावारिस, किशन कन्हैया सहित 100 से ज्यादा हिंदी और 40 से ज्यादा मराठी फिल्मों में काम किया.
यस. एंड यू नो ही वन द 1978 फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर द फिल्म घरौंदा.
जी बिल्कुल. और सिनेमा के अलावा मराठी, हिंदी और गुजराती रंगमंच से जुड़े रहे श्रीराम लागू ने 20 से अधिक मराठी नाटकों का निर्देशन भी किया. और हमें मराठी थिएटर में तो उन्हें 20वीं सदी के सबसे बेहतरीन कलाकारों में गिना जाता है.
बिल्कुल, बिल्कुल.
और जो मशहूर नाटक है नट सम्राट, उसमें उन्होंने गणपत बेलवलकर की भूमिका निभाई थी, जिसे मराठी थिएटर में मील का पत्थर माना जाता है.
उसी का एक डायलॉग सुन ले.
बिल्कुल.
टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन. जगावं कि मरावं हा एकच सवाल आहे. या दुनियेच्या उकिरड्यावर खरकट्या पत्रावळीचा तुकडा होऊन जगावं बेशरम, लाचार, आनंदानं का फेकून द्यावा देहाचा लखतर मृत्यूच्या काळ्या शार डोहामध्ये आणि करावा शेवट सर्वांचा एकाच प्रहारानं माझा तुझा याचा आणि त्याचा मृत्यूच्या महासर्पानं जीवनाला असा डंख मारावा.
Today we are celebrating the birth anniversary of Indian businessman, media proprietor and film producer Ramoji Rao. He was the head of the Ramoji Group, which owns the world's largest film production facility, Ramoji Film City. ENRU newspaper, ETV network of TV channels and film production company Usha Kiran Movies. Rao garnered 4 Filmfare Awards South, 5 Nandi Awards and the National Film Award for his works in Telugu cinema. In 2016, he was honored with the Padma Vibhushan, India's second highest civilian honor, for his contributions in journalism, literature and education.
और आज कथक गुरु शंभू महाराज की जयंती है. उनका ताल्लुक कथक के लखनऊ घराने से था और नृत्य कला उन्हें विरासत में मिली थी. कथक की शिक्षा भी उन्होंने पहले अपने चाचा बिंदादीन महाराज से और बाद में बड़े भाई अच्छन महाराज से ली. उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत भी सीखा था. रम्या, कथक का जो लखनऊ घराना है उसकी खास बात है कि उसमें अभिनय यानी भाव पक्ष पर बहुत ध्यान दिया जाता है.
बिल्कुल बिल्कुल.
और कथक के संग ठुमरी गाकर उसके भावों को शंभू महाराज जिस तरह प्रदर्शित करते थे, देखने वाले उस पर मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकते थे.
बिल्कुल.
और उनके भतीजे थे पंडित बिरजू महाराज, जो कि उनके बारे में बताते हैं कि गुरु शंभू महाराज कहा करते थे कि बेटा ऐसा बोल कि भाव वैसे ही हो जाया करें, हाथ तो बहुत देर में उठाने की बात है, जरा सी नजर उठे और सारी बात बन जाए.
बिल्कुल.
शंभू महाराज को 1967 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से और 1956 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था.
एंड मुदिता, टुडे इज आल्सो द बर्थडे ऑफ पुलेला गोपीचंद
जी,
इंडियन फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर एंड करंटली ही इज द चीफ नेशनल कोच फॉर द नेशनल बैडमिंटन टीम.
बिल्कुल. और कोच के तौर पे तो बड़े कामयाब रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सायना नेहवाल और पीवी सिंधु को उनके ओलंपिक पदक जीतने में भी मदद करी थी.
बट यू नो, इंटरेस्टिंगली जब वो बच्चे थे उनका मन था कि वो क्रिकेट खेले
जी,
बट उनके भाई ने उनको कहा कि नहीं जी, आप बैडमिंटन पे फोकस करिए.
ओ बिल्कुल. तो पुलेला गोपीचंद को अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार के साथ ही पद्म भूषण और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है. और आज ही भारत की लंबी दूरी के प्रसिद्ध तैराक मिहिर सेन की जयंती है. 1930 में आज ही के दिन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में जन्मे मिहिर यूं तो कोलकाता हाईकोर्ट में बैरिस्टर थे, लेकिन उन्हें तैराक के रूप में ज्यादा जाना जाता है. 1958 में इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले वे पहले भारतीय ही नहीं बल्कि पहले एशियाई भी बने. 1966 में उन्होंने नए कीर्तिमान स्थापित किए. वे 5 महाद्वीपों के 7 समुद्रों को तैर कर पार करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने. इनमें पाक जल, डमरू मध्य, डार्डनेल्स, बॉस्फोरस, जिब्राल्टर और पनामा नहर की पूरी लंबाई शामिल थी. और ऐसी साहसिक और बेजोड़ उपलब्धियों के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया. और अब हम बात करते हैं 80 के दशक की मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री की, जिनका आज जन्मदिन है. उनका असली नाम शशिकला शेषाद्री है. 17 साल की उम्र में मिस इंडिया खिताब जीतने के बाद उन्होंने फिल्म पेंटर बाबू से अभिनय की दुनिया में कदम रखा, लेकिन वो स्टार बनी फिल्म हीरो से. इसके बाद मेरी जंग, दहलीज, गंगा जमुना सरस्वती, शहंशाह, जुर्म, घायल, दामिनी जैसी कई फिल्मों में उन्होंने नायिका की भूमिका निभाई. और श्रोताओं, अब समय इजाजत नहीं दे रहा है, तो अनुमति दीजिए मुदिता और रम्या को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की. अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन करिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर.
Namaskar.